स्वागत। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। विषय है भारतीय संस्कृति के प्रतीक शिखा और सूत्र।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव के विचार इसमें बहुत गहरे हैं।
बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ शिखा और सूत्र के बाहरी रूप की बात नहीं है, उन्होंने तो इसके पीछे छिपे अर्थ, उसके दर्शन को उजागर किया है। आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम इन प्रतीकों के असली महत्व को समझें, जैसा पूज्य गुरुदेव ने समझाया।
सही कहा। पूज्य गुरुदेव ये तो मानते थे कि प्रतीक जरूरी हैं जीवन में, पर वो सावधान भी करते थे कि भाई प्रतीक को ही सब कुछ मान लेना ठीक नहीं, ये तो बस इशारे हैं।
इशारे? किस तरह के इशारे?
मतलब जो हमें हमारे मूल आदर्शों की, प्रेरणाओं की याद दिलाते रहे, माध्यम है बस।
अच्छा, तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रतीक पूजा और जिसे वो बुत परस्ती कहते हैं, उसमें क्या अंतर बताया है?
हाँ देखो, वो ये साफ करते हैं कि प्रतीक जरूरी है। जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज है, उसे देखकर देशभक्ति जागती है ना?
हाँ बिल्कुल।
वैसे धार्मिक प्रतीक हमें ऊंचे आदर्शों से जोड़ते हैं, तो वो मूर्ति पूजा को सही मानते थे अगर उसका उद्देश्य ईश्वर या उससे जुड़ी अच्छी भावनाओं को याद करना हो।
लेकिन
जब मूर्ति ही भगवान बन जाए और उसके पीछे का जो भाव है वो हम भूल जाए, तो वो बुत परस्ती हो जाती है, मतलब एक अंधविश्वास।
अच्छा, तो प्रतीक एक रास्ता है, मंजिल नहीं। स्रोत में शायद मोहम्मद साहब का भी जिक्र था।
हाँ, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने भी बुत परस्ती का विरोध किया था, क्योंकि उस समय प्रतीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, अर्थहीन कर्म कांड बढ़ गए थे। पर सही मायने में प्रतीकों की जरूरत या पूजा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, बस शर्त यह है कि उसका मतलब समझे।
ये बात तो स्पष्ट हुई। अब आते हैं शिखा पर। गुरुदेव शिखा को किस तरह देखते थे, इसका क्या मतलब है, क्या प्रतीकवाद है?
देखो, पूज्य गुरुदेव शिखा को मानते थे ज्ञान और विवेक का झंडा।
झंडा?
हाँ, जैसे किले पर झंडा लहराता है, वैसे ही ये हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर लहराना चाहिए। वो इसे साक्षात गायत्री माँ का रूप मानते थे, प्रज्ञा का, विवेक का प्रतीक, इसीलिए इसे सिर पर सबसे ऊंची जगह पर धारण किया जाता है।
अच्छा, तो ये सिर्फ बालों की एक लठ नहीं है, ये तो अंदर के ज्ञान विवेक की पहचान हुई।
बिल्कुल।
और स्रोत में ये भी था कि इसके लिए लोगों ने बलिदान दिए।
हाँ बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव इसी बात पर थोड़ी चिंता भी जताते थे कि आज पुरुषों में ये प्रतीक लगभग खत्म सा हो गया है, जबकि इतिहास में लोगों ने इसकी रक्षा के लिए जाने दी हैं। वो कहते थे कि स्त्रियां अपनी वेणी या चोटी के रूप में फिर भी इसे कुछ हद तक संभाले हुए हैं।
तो शिखा हुई ज्ञान का प्रतीक। अब बात करते हैं सूत्र की, मतलब यज्ञोपवीत या जनेऊ की। वो जीवन में क्या दिखाता है?
यज्ञोपवीत को पूज्य गुरुदेव कर्म का प्रतीक बताते थे, यज्ञ भावना का, हमारे जो सामाजिक नैतिक कर्तव्य हैं उनका प्रतीक।
अच्छा, वो कैसे?
ये कंधे पर धारण करते हैं ना, हृदय के पास से गुजरता है, पीठ पर भी रहता है, तो ये मानो लगातार हमें याद दिलाता है।
किस चीज की?
हमारे कर्तव्यों की, हमारी जिम्मेदारियों की, हमें मर्यादाओं में बांधता है।
मर्यादा में बांधना, ये बात थोड़ी और समझाएंगी, कोई उदाहरण दिया उन्होंने?
हाँ, एक सरल सा उदाहरण दिया, जैसे जानवर को रस्सी से खूंटे से बांधते हैं ताकि वो सीमा में रहे, वैसे ही यज्ञोपवीत हमें नैतिक और सामाजिक अनुशासन में रहने की प्रेरणा देता है। और सबसे जरूरी बात,
हाँ,
पूज्य गुरुदेव जोर देकर कहते थे कि यज्ञोपवीत किसी एक वर्ग का नहीं है, ये हर आस्तिक हिंदू का अधिकार भी है और कर्तव्य भी, ये अच्छे कर्म करने का एक संकल्प है।
तो शिखा ज्ञान की प्रेरणा और सूत्र कर्म की, पर गुरुदेव के लिए सिर्फ इन्हें पहन लेना ही काफी नहीं था, है ना?
हाँ, उनका असली जोर कहीं और था।
बिल्कुल सही पकड़ा। पूज्य गुरुदेव की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि लोग इन प्रतीकों को अपना तो रहे, पर इनके पीछे का जो गहरा दर्शन है, जो शिक्षा है, जो प्रेरणा है, उसे भूलते जा रहे हैं।
बिना अर्थ समझे तो ये सिर्फ एक बाहरी कर्म कांड रह जाता है, एक रस्म।
और उसका नतीजा क्या होता है?
नतीजा ये कि जब अगली पीढ़ी पूछती है कि भाई ये क्यों पहनते हैं, और माँ बाप कोई तर्क वाला जवाब नहीं दे पाते, तो बच्चों में इनके प्रति या तो अनास्था पैदा होती है या वो इसे अनदेखा करने लगते हैं। गुरुदेव ने समझाया भी, जैसे टाई ईसाइयों में क्रॉस का प्रतीक हो सकती है या खास टोपी मुसलमानों में उनकी पहचान हो सकती है, वैसे ही शिखा सूत्र हिंदू की पहचान से जुड़े हैं, पर बिना अर्थ समझे ये खोखले हैं।
हाँ, ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब असल बात है अर्थ को जीना ना कि सिर्फ प्रतीक को ढोना। तो पूज्य गुरुदेव ने शिखा सूत्र को भारतीय संस्कृति के किन मूल स्तंभों से जोड़ा था?
उन्होंने शिखा को गायत्री से जोड़ा, गायत्री यानी विवेक, अच्छी बुद्धि, और यज्ञोपवीत को यज्ञ से, यज्ञ यानी श्रेष्ठ कर्म, अपना कर्तव्य निभाना। वो इन्हें भारतीय संस्कृति के माता पिता कहते थे, ज्ञान और कर्म।
माता पिता, ज्ञान और कर्म।
हाँ, तो इन प्रतीकों को धारण करने का असली मतलब है विवेक और कर्म, इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना।
तो अगर हम पूज्य गुरुदेव के विचारों का सार निकालें, तो शिखाओ और सूत्र ये सिर्फ धागे या बाल नहीं है?
बिल्कुल नहीं,
ये तो भारतीय संस्कृति के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, विवेक और कर्म, उनके जीते जागते प्रतीक।
एकदम सही कहा, इनका असली मूल्य सिर्फ पहनने में नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो गहरी शिक्षा है, जो प्रेरणा है, उसे समझकर अपने जीवन का हिस्सा बनाने में है। बिना समझे पहनना वो भी एक तरह की बुत परस्ती ही है।
सही है।
जबकि समझकर धारण करना मतलब उन आदर्शों को जीना है।
हाँ, क्योंकि बाहरी रूप बदलने से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदर का बदलाव, और वो तो इनके दर्शन को समझने और अपनाने से ही आएगा।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाते हैं।
जरूर।
आज का दौर बदल रहा है, बाहरी पहचाने बदल रही है, ऐसे में ये जो आंतरिक सिद्धांत है, विवेक और कर्तव्य, ये किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक दिशा कैसे दे सकते हैं और हमारे समाज को कैसे मजबूत बना सकते हैं?
ये बाकी सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।